ओम शांति। बाबा के घर में भट्टी करने का सबको बहुत सुंदर मौका मिला है। वैसे तो साकार बाबा दिल्ली वालों को बहुत याद करते हैं और बाबा हमेशा क्या कहते हैं, दिल्ली क्या होगा है? क्या होगा बोलो? दिल्ली राजधानी होगी। तो हमको दिल्ली में आना चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या एक एक बार एक एक बोले हैं? देखो, दिल्ली है राजधानी, मधुबन है तपस्या का किला, मधुबन तपस्या का किला है, तो इसलिए आप तपस्वी किले में आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कई बार बाबा दिल्ली को याद करते हैं, दिल्ली राजधानी को याद करते हैं, दिल्ली की सेवा के लिए भी याद करते हैं। और पहले पहले जो सेवा आरंभ हुई वो भी दिल्ली में आरंभ हुई, दिल्ली के साथ साथ पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड भी आरंभ हुई। तो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत बड़ा भाग्य है और आप सबको पहले पहले ही चांस मिल गया। तो आज भी बाप दादा आप सबको देख करके वतन में बहुत खुश हो रहे थे। बाप दादा, दादियां, एडवांस पार्टी के जो भी हमारे आदि रतन हैं, आप सबको देख करके बहुत खुश होते हैं। और दिल्ली के लिए तो हमें याद आता है, बाबा ने कहा था बड़े बड़े प्रोग्राम करो, प्राइम मिनिस्टर से मिलो, प्रेसिडेंट से मिलो। हमें याद भी आता है कि हमारी दादियों ने कैसे सेवा की। जब दिल्ली में गए सेवा आरंभ करनी थी तो उस समय गंगे दादी और मनोहर दादी कहाँ बैठे? जमुना के कंठे पर जाकर बैठ गए। और मनोहर दादी ने क्या किया, गंगे दादी को देवी रूप बना करके बिठा दिया और सबको बोलते थे आओ आओ देवी का दर्शन करो। उस समय देखते थे आप, ना कोई भाषा थी, क्योंकि वो लोग तो हिंदी जानते भी नहीं थे, भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन जो भी आते थे उनके तपस्वी स्वरूप में उनको विशेष अनुभव होते थे। और वो तपस्वी स्वरूप ऐसा था जिसके कारण वहाँ दिल्ली में सेंटर खुल गया। वहाँ पर एक दो बार पहलवान आए और दादियों के पास आए तो मनोहर दादी सोचने लगी कि ये पहलवान आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। वो पहलवान आए और बोला कि नहीं दादी, आप हमारे पास आकर रहो, आप बहने हैं गंगा के किनारे, सागर ओ सॉरी यमुना के किनारे, आप कैसे बैठेंगे? उन्होंने मकान दिया और हमारी दादियों ने सेवा की। फिर बाबा ने किसको भेजा? बड़ी दीदी को भेजा और कुंज दादी को भेजा। और कुंज दादी तो बहुत सेवा करती, जिस समय वो दिल्ली में बैठे तो उनके पास एक छोटा सा कमरा और खाने का भी वही, रहने का भी वही, सोने का भी वही और साथ साथ सेवा का स्थान भी वही। तो दीदी कभी कभी बताती है कि कई बार ऐसा होता था खाने को भी नहीं होता था, छोटे छोटे आलू मिलते थे ना, वो आलू की सब्जी, छोटे छोटे नहीं, उसकी सब्जी बना करके पानी डाल करके ज्यादा सा ऐसे वो खाना खाते थे। लेकिन बाबा को तो पता था दिल्ली की भूमि जो है ये बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है। और दूसरा भाग्य आपको क्या मिला, दिल्ली के अंदर सभी महारथी दादियों ने ही वहां पर रहे और सेवा की। और तीसरा भाग्य आपको क्या मिला, बाबा का रथ, बाबा का रथ गुलजार दादी दिल्ली और एनसी जोन की क्या रही, जोन इंचार्ज। शुरू में रही लेकिन तो दादी थी, बाबा की दादी थी। तो बाबा कहते हैं दिल्ली वालों को बाबा कितने मुबारक देते हैं और दिल्ली से भी कितने रतन निकले हैं। ये देखो हमारी पूनम बहन, प्रभा बहन, प्रभा बहन आप भी आओ, इधर आके बैठो ना, आओ प्रभा बहन ऊपर आके बैठो। तो हमारी प्रभा बहन है और आप सभी को ऐसे स्थान से लेकर के आए हैं, पहला है शालीमार बाग, हैं? शालीमार वाले बाग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, क्या नशा रहता है आपको, हैं? शालीमार बाग वाले हाथ उठाओ, लेकिन नशा क्या रहता है वो बताओ अभी, हैं? नहीं रहता, हाँ बताओ। अच्छा बाबा ने, हाँ बैठ बैठ, आओ बैठो बैठो। देखो बाबा कहते हैं ये रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। शालीमार मीन्स शालीनता से रहना, शालीनता। बाबा ने इतने दिव्य गुण सिखाए हैं और बाबा कहते हैं ये मेरे रॉयल बच्चे हैं, और रॉयल बच्चे भी हैं, और आप सबकी सेवा करने वाली हमारी पूनम बहन भी बहुत ही रॉयल है और बहुत प्यार से आप सबकी सेवा करती है और इतना बड़ा ग्रुप लेके आई हैं। और दूसरी बात आपको बताएं, आपके अंदर का इतना पावरफुल संकल्प रहा कि जो हमारी रेखा गुप्ता बहन जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बने और सीधा ही आपके पास आई, शिव जयंती पर आप ही आई, सोचा भी नहीं था, और इतनी निर्माण चित बाबा की बच्ची, और वो आप उसके लिए भी तो ताली बजाओ ना। हमने आप सारा प्रोग्राम देखा, वो आई और उसने कहा चीफ मिनिस्टर मैं दूसरी, पहली मैं बाबा की बच्ची हूँ, तो ये कोई कम बात थोड़ी है। तो बाबा की बच्ची है तो ये कम बात नहीं है। और दूसरी बात हम देखते हैं, डिफेंस कॉलोनी वाले हाथ उठाओ। डिफेंस कॉलोनी के तो बहुत टाइम से सुनते चले आते हैं, और इसको संभालने वाली हमें हमारी प्रभा दीदी। और डिफेंस वाले क्या करेंगे बताओ, हैं? बताओ बताओ क्या करेंगे, हैं? हैं? डिफेंस वाले क्या करेंगे? बाबा कहते माया, नहीं नहीं माया बहुत शैतान है, किसी को नाक से पकड़ लेती है, किसको पीछे से पकड़ती है, किसी को कान से पकड़ती है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ठीक है? अपनी सेफ्टी में क्या है, बाबा ने कहा है अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ। और दूसरी बात बाबा ने कही कि इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। तीसरी बात, कई तरह के लोग मिलेंगे, नहीं ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो क्या करते हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, एक से पूछेंगे चार्ट कैसे लिखना है, एक व्यक्ति आपको अपना चार्ट बता देगा, फिर दूसरा मिलेगा वो दूसरा चार्ट बता देगा, तीसरा मिलेगा तीसरा चार्ट बता देगा, चौथा मिलेगा चौथा चार्ट बता देगा। कितने चार्ट जमा करेंगे, फिर कहेंगे हमारा तो पुरुषार्थ ढीला है। अभी मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक बार फॉरेनर सीजन के टाइम पर एक विदेशी बाबा के पास आया, बाबा को कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता है। उसने आने से पहले अपने भाई बहनों को पूछा था कि मैं बाबा से पूछूंगा, बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा के पास बैठा तो बाबा ने उसको पहले वरदान दिया, ये स्वतः सदा का सहज योगी है। तो सारे हंसने लगे, बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो, सबने कहा बाबा, किसी ने कहा बाबा ये कहता मेरा योग नहीं लगता है, तो बाबा ने कहा क्या कहता योग नहीं लगता, योगी तो लगता है। कहता बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं कैसे याद करूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता। सबसे ज्यादा याद तो ये कर रहा है, बोल क्या रहा है, सबसे ज्यादा तो यही याद कर रहा है, लेकिन याद में क्या किया है, उल्टी चक्की चलाना शुरू करे। अब चक्की चलाएंगे उल्टी तो आटा कहाँ जाएगा, पिसेगा भी से कुछ ऊपर चला आएगा, फिर कोई उल्टी गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, जाकर के पीछे दीवार को मारेगा, रिवर्स गाड़ी चलाएगा, कोई उल्टा चलेगा तो लोग उसको क्या कहेंगे, ऐसा है ना, बोल देते हैं ना अभी इसको कुछ हो गया है। तो बाबा कहते हैं याद सब करते हैं, कोई ऐसा मेरा बच्चा नहीं है जो बाप को याद ना करता हो, लेकिन याद के अंदर जो सोचते हैं ना कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते, बाबा समझते इसकी याद है, इसकी लगन है, लेकिन रियलाइजेशन कम है। तो हमें खुशी रहनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको चुना है, बाबा ने ऐसे सेवा स्थान पर बैठाया है तो हमें खुशी भी होनी चाहिए। और दूसरी बात हम आपको बताएं, देखो बाबा के टाइम पर ये पांडव भवन कितना छोटा था, कुछ भी स्थान नहीं था, ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। बाबा के टाइम पर एक छोटा सा हॉल था, फिर साकार बाबा ने हिस्ट्री हॉल बनवाया और साकार बाबा ने खड़े होकर के ट्रेनिंग सेक्शन भी बाबा ने बनाया। अभी तो बाबा के बच्चों के पास बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है, अभी आपके सेंटर इतने बड़े हैं, रॉयल सेंटर हैं, फिर भी यहाँ भट्टी करने क्यों आते? ORC है दिल्ली के, देखो तो कितनी अच्छी जगह है, ORC में जाओ तो रॉयल्टी बहुत है, यहाँ तो रहने को बहुत सिंपल है। तो अच्छा लगता है यहाँ या दिल्ली में अच्छा लगता है? नहीं नहीं दिल्ली में अच्छा, वहाँ तो इतनी अच्छी जगह है ना, दिल्ली अच्छा है ना? नहीं तो यहाँ फिर सब खुश हैं? बाबा को बता दे कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का पक्का तकलीफ नहीं है ना, यहाँ तो इतनों के साथ रहते हैं, बहुत सिंपल है। अभी तो बाबा ने बहुत अच्छा कर दिया, बाबा के टाइम पर ठंडी में बैठने की जगह भी नहीं होती थी, पट में बैठते थे, दादियाँ भी पट में बैठती थी। अभी तो आप सबको बाबा ने क्या बना दिया है, प्रिंस प्रिंसेस बना दिया। सोफे पे बैठो, आराम से बैठो, आराम से करो, आराम से रहने का भी है। बाबा के टाइम पर क्या होता था, सब पट पर सोते थे और बाबा खुद जाकर के कमरों में चक्कर लगाते थे, और उस समय मच्छर भी आ जाते थे, गर्मी होती थी। तो उस समय बाबा ने एक दो बहनों की ड्यूटी लगाई हुई थी, एक लोहे की होती थी छोटी सी कटोरी टाइप और डंडा पकड़ के, उसमें वो कुछ ऐसी चीजें डाल के मच्छर भगाने हैं सामग्री होती थी, थोड़ी आग लगा देते थे तो मच्छर भगाने का होता था। फिर बाबा क्या करते थे, सबके पास जाते थे तो बाबा कहते थे खुश हैं, फिर सबको, फिर बाबा के टाइम पर देखो कोई डाइनिंग हॉल भी नहीं था, सब ऐसे ही बैठ के खाते थे। तो बाबा के टाइम पर एक बार क्या हुआ, बाबा को देखा तो सब कुछ भूल जाते थे। एक बार बाबा ने बच्चों को कहा कि आज बाबा जो है बच्चों को रॉयल भोजन कराएंगे, अब ध्यान से सुनना, बड़े खुश बच्चे, बहुत खुश, बोला बाबा हमको रॉयल भोजन कराएंगे। अब बाबा ने क्या किया, बाबा के पास तो महारथी भाई बहने आए हुए थे, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया बाबा ने, चार बड़े बड़े पत्थर की स्लैब्स उठवाई, एक स्लैब एक साइड खड़ी की, एक स्लैब एक साइड खड़ी की, एक स्लैब बीच में टेबल स्टाइल कर दी और सबको बिठा दिया। तो सब इतने खुश, उनको यही पता नहीं कि हम पत्थर पर बैठ के खा रहे हैं, हाँ बनने वाले विश्व महाराजन है, लेकिन बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो यहाँ पर जो है बाबा ने तपस्या की है, और बाबा ने जो कराया है उस तपस्या की जो अनुभूति है वो कोई कम नहीं है। यहाँ बाबा के घर आना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, भाई बहने आते हैं, नीचे रहते हैं, और यहाँ आकर के केवल आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए पांडव भवन में आते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। लेकिन आप सभी भट्टी वाले इतने लकी हैं कि आपको 5 दिन रहने का मौका मिलता, ऐसा मौका कहीं मिलेगा है? 5 दिन रहने का, बाबा के कमरे में जाने का, शांति स्तंभ पर जाने का। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, कई तरह के लोग मिलेंगे आपको, मतलब उनका खुशी होती है कि आप क्या सेवा करते हैं, आपका पुरुषार्थ क्या है। इन बातों से थोड़ा सा न्यारा और प्यारा होना है, क्योंकि आप भट्टी में आए हैं, तो वो ध्यान रखेंगे तो रहेगा। फिर जब साग बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय मालूम है कि पहले अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आते थे, पहले पहले बाबा बाबा के कमरे में आए, 8-10 भाई बहने मिलते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत भाई बहने आ गए, तो उस समय क्या किया बाबा, सब ने दादियों ने प्लान किया कि अब क्या करें। उस समय बाबा की पदरा मणि, ये जो बाबा का इधर है ना दादी का कमरे के बाहर, वहाँ स्टेज बना दी थी, और सबको 2 बार भोजन था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन, वो शाम का रात का भोजन शाम को 5 से 6 के बीच में पूरा, और 6:30 बजे अव्यक्त बाप दादा की पधरा मनी हुई। तो उस समय सभी भाई बहने, कोई उस पहाड़ी पर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, तो ऐसा लगता था जैसे कि फरिश्तों की सभा है। फिर प्लान किया गया कि अब बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं तो अभी क्या किया जाए। फिर ये हॉल का प्लानिंग किए गए, आप जहाँ बैठे मालूम है ये क्या स्थान है, ये बाबा की पहाड़ी है। कहेंगे हमको बाबा की पहाड़ी पर घूमने जाना, अरे आप तो बाबा की पहाड़ी पर बैठ के तपस्या करें, ये पहाड़ी है और यहाँ पर ही जो बेल है ना, अंगूर की बेल थी यहाँ तक थी, तो ये आप बाबा का एक फोटो हिस्ट्री हॉल में देखेंगे, बाबा ऐसे बहुत पहाड़ी पर रिलैक्स होकर के बैठे हैं, वो यहाँ इस पहाड़ी का है। तो अभी आपको डबल फायदा, आप जहाँ भट्ठी कर रहे हैं ना, एक तो बाबा की पहाड़ी पर बैठ के कर रहे हैं और दूसरा 1975 में ये हॉल बन के तैयार हुआ और 75 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आने लगे। है कोई जो इस हॉल में बाबा से मिलने आए हो? बस एक दो। अच्छा, 75 से लेकर 82 तक बाबा यहाँ आते थे और बाबा की गद्दी यहाँ होती थी और सब हम सब क्या हैं, बाबा के जो छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ आसपास घेर के बैठे रहते थे, बाबा को बाबा के साथ बैठते थे, बाबा से बहुत बातें करते थे। फिर साकार बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थी ना, तो साकार बाबा कभी कभी पहाड़ी पर आके बैठ जाते थे। फिर नीचे आंगन में खड़े हुए भाई बहने गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, बाबा कहते आओ बच्चे सारे आ जाओ, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे, यहाँ बाबा के साथ बैठते थे, बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, बाबा बहलाते भी थे। फिर कभी कभी बाबा ना कहते थे आज बाबा सेमिनार करेंगे। सेमिनार क्या, सब महारथी भाई बहनों को बुला करके बाबा यहाँ पर बैठ करके सेवा के प्लान, पुरुषार्थ के प्लान कराते थे। तो इसलिए आप जहाँ जिस स्थान पर भट्ठी कर रहे हैं, योग में हम हॉल में भट्ठी कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपके पास दिल्ली में तो बड़े सजे सजाए हॉल मिलेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, देखो ना, सजे सजाए मिलेंगे, बड़े अच्छे रॉयल मिलेंगे, सब साधन मिलेंगे, लेकिन यहाँ बाबा के इस हॉल में डबल तपस्या है। एक तो साकार बाबा ने यहाँ पहाड़ी पर बैठ के तपस्या की और दूसरा अव्यक्त बाप दादा के जो पधरा मणि के महावाक्य हैं, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बच्चों को अनुभव कराने वाले थे। तो आप सबका बाबा के घर में बहुत स्वागत है, स्वागत है। और जब बाबा के पास आते थे ना, बाबा बच्चों को सौगात देते थे, कुछ भी हो जाए खाली हाथ नहीं भेजते थे। बाबा कहते थे कोई भी आत्मा आए उसको ज्ञान से भरपूर करो, और साकार में बाबा बच्चों को सौगात देते थे और कुछ न कुछ सौगात देंगे। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि ने भी यही नियम रखा, कोई भी आए, चाहे नीचे आए कहीं भी आए, सौगात सबको मिलती है। तो बाबा को जब सौगात देते थे ना, तो बाबा साथ में टोली खिलाते थे, कलाकंद टोली खिलाते थे, और बाबा टोली खिलाते थे ना, बाबा कहते थे बच्चे मुंह खोलो, अब देखो मुंह खोलो किसके पास पहुंचेगी, खोलो मुंह खोलो, आप सब की तरफ मुंह खोलो, ताली बजाओ, आपके मुंह में पहुंच गई कि नहीं, पहुंच गई ना। तो बाबा क्या करते थे, मुंह में डाल के खुद खा लेते थे, फिर बच्चे बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों की तरह बच्चों को बहुत बहलाते थे, बहुत बहलाते थे। बाबा कहते थे जो यज्ञ के नियम है उसकी पालना पूरी करो, ब्राह्मण लाइफ के जो नियम है उसकी पालना पूरी करो, बाकी आराम से रहो, ब्राह्मण लाइफ है ही खुशियां मनाने का, मौजों में रहने का, संगम युग के अंदर कभी भी कोई भी प्रकार की दुख की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, दादी प्रकाशमणि हमेशा कहती थी दिल खुश मिठाई खाओ, मीन्स सदा दिल को खुश रखना है, छोटी छोटी बातों का चिंतन नहीं करना है, तभी आपको ये मिलेगी बाबा के घर से याद सौगात बेडशीट। ये जो सौगात मिलेगी किसको बांटना नहीं, भल दूसरी बेडशीट एक्स्ट्रा भल बांटो, ये तो भट्टी की यादगार है, इसलिए इसको संभाल के रखना। ट्रेन में आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, घर में भी यूज करो, ये नहीं बांटना, बाकी जो चाहिए कुछ बांटो। ठीक है, तो अभी सब ठीक है, खुश है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, एक बात और बतानी है, कभी कभी योग के बाद अमृत वेले सुबह अकेले अकेले घूमने चले जाते हैं। जाते है कोई अकेले? नहीं ना, कभी अकेले नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है ये माउंट आबू जो है जंगल एरिया, लेकिन बाबा ने यहाँ क्या कर दिया, बच्चों के लिए मंगल कर दिया है। तो भालू आते हैं सुबह सुबह, बड़े खुश हो जाएंगे आपको देख के, कहेंगे ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा हमको, इस है मिला आज, कहाँ मिला था। देखो दो जगह मिलता है, एक तो ज्ञान विज्ञान की तरफ, दूसरा मिलता है आधर देवी की तरफ, तीसरा नक्की ये नीचे जाते हैं ना, नीचे कॉर्नर से उतरते हैं, वो आते हैं पानी पीने के लिए। गर्मी में वो इसलिए बाहर निकलते हैं, सर्दी में नहीं आते यार, गर्मी में आते उनको प्यास तो लगती ना, पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ खास करके तीन भालू हैं, वो अपने एक भालू है उसके साथ दो बच्चे हैं, वो आती हैं अपने लिए, लेकिन उनको लगता है कि ये लोग निकल रहे हैं ना, ये हम पे अटैक ना करें, इसलिए वो आप सबको देख के खुश तो हो जाएंगे, लेकिन वो अपना काम भी कर लेते हैं कभी कभी। इसलिए ध्यान रखना, अकेले नहीं आओ, सुबह 4 बजे भी दो दो तीन तीन करके आओ, लाइट में आओ, तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी ध्यान रखना होता है, कभी आ जाते, क्योंकि गर्मी में उनको पानी की जरूरत होती है, वो खास पानी के लिए आते, खाने पीना तो जंगल में मिल जाता है, इसलिए वो ध्यान रखना है सबको, अकेले नहीं जाओ। कभी कभी यहाँ सुखधाम के आगे से क्रॉस करते हैं, कहर करते कुछ नहीं है, क्रॉस करते हैं, तो ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आप सबको सौगात मिलेगी। अच्छा, आप सबको मालूम रहे कि बाबा का घर जो है बहुत अच्छी तरह से बाबा संभाल रहा है, साथ साथ ये बाबा के टाइम से बिल्डिंग बनी हुई है, और बाबा के टाइम पर जो पुरानी बिल्डिंग है सब चूने की बिल्डिंग थी और चूना है, तो अभी बीच बीच में हम सभी थोड़ा थोड़ा रेनोवेशन भी कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे जहाँ आप खाना खाते हैं ऊपर डाइनिंग हॉल में, नीचे किचन है, उसका रेनोवेशन भी चल रहा है। उस किचन की जो रेनोवेशन चल रहा है, तो किचन का जो रोटी विभाग है ऊपर के डाइनिंग पर ही शिफ्ट किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, और भी चल रहा है, सब भाई बहने बहुत प्यार से सहयोग दे रहे हैं। कईयों का मन होता है कि हम पांडव भवन के लिए क्या करें, तो किचन के जो रेनोवेशन चल रहा है उसके लिए भी कोई अगर करता है, तो बाबा के कार्य तो बाबा कर ही रहा है, लेकिन बाबा के कार्य में हर एक के बूंद बूंद से तालाब भरता है। अभी रेनोवेशन का कुछ कार्य हुआ भी है, कुछ बिल्डिंग को रेनोवेट किया है, और अभी किचन की रेनोवेशन चल रही है। इसलिए क्यों बता रहे हैं, कई बार कई भाई बहने क्या करते, नीचे ही भोजन करते हैं, तो हम उनको हमेशा कहते हैं भोजन ऊपर डाइनिंग हॉल में करो, क्योंकि नीचे केवल मधुबन वालों को भी बैठने का स्थान नहीं मिलता है, तो किचन का भी रेनोवेशन चल रहा है, कभी किसको देखना हो तो जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी सब बैठे हैं, कोई उठेगा नहीं, पहले हैं टोली गीता बहन देगी, बाकी गीता बहन टोली देगी, क्योंकि इस आप सबको मालूम हो कि गीता बहन ये भी दिल्ली की है, पता है कि नहीं है, दिल्ली मेरठ एक ही है ना, NCR दिल्ली के कमरा है, वो भी NCR मेरठ की है, बहुत पुरानी है, साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है, और अभी खास भट्टी के लिए, आपकी भट्टी के लिए आई है। तो जैसे हम सौगात देंगे तो मेरे से सौगात लेंगे, अगर किसी को कुछ रखना होगा यहाँ रखेंगे, और गीता बहन से टोली लेंगे, प्रभा बहन और पूनम बहन से दृष्टि लेंगे, ठीक, जिस सीता की आपको पता रहेगा ना, हैं?
हाँ। ओम शांति। आप सभी ने शशि दीदी के द्वारा बहुत ही सुंदर बातें सुनी और अपने अपने शहर का महत्व भी आपने जाना, शायद इतना गहराई से सोचा नहीं होगा आपने। शशि दीदी को कौन कौन नहीं जानते हैं वो हाथ खड़ा करे। दीदी सभी जानते हैं आपको, फिर भी मैं संक्षिप्त में थोड़ा बता देना चाहूंगी। आपका जन्म करनाल में हुआ और 10 वर्ष की अल्पायु में ही आपने ज्ञान प्राप्त किया और 21 वर्ष की आयु में आपने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। आपने सेवार्थ बंगाल, बिहार, नेपाल, काठमांडू आदि में भी अपनी सेवाएं दी। 1974 से आप यहां मुख्यालय में आधिकारिक कर्तव्यों में प्रशासन और कार्यालय की जिम्मेवारियां संभालना, राजयोग ध्यान शिविर, सेमिनार, सम्मेलन आदि की व्यवस्था करना, साथ ही विदेशी प्रतिनिधियों बी के भाई बहनों के आवास निवास की व्यवस्था के आप समन्वयक हैं। आरईआरएफ के अंतर्गत स्पोर्ट्स विंग, पहले प्रशासन विंग के आप समन्वयक थे, अभी स्पेशली आपका स्पोर्ट्स में बहुत पहले से रुचि रही है, उसको देखते हुए स्पोर्ट्स विंग की राष्ट्रीय समन्वयक तथा उपाध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय आप संस्था की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आप पूरा ही पांडव भवन परिसर को बहुत ही सुचारू रूप से संभाल रहे हैं, साथ साथ जो अपनी संस्था के इंटरनल एक्टिविटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय शशि दीदी जी,
आप सबको मालूम हो बाबा का काम है, बाबा करता है, किसी को भी निमित्त बना के कराता है। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम सभी बाबा के कार्य में सेवारत हैं, बाबा साथी हैं। तो इसलिए सभी को ध्यान रखना है, कराने वाला बाबा, करने वाला बाबा, किसी के द्वारा भी कराए कराने वाला बाबा है।